आज हमारी चर्चा का विषय है कि शांति का सूत्र क्या है, हम लोग शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा विषय है और प्रायः लोग इस जगत में अशांत हैं, तो ये हमारे लिए जानना आवश्यक होगा कि हमें शांति मिलेगी तो कैसे मिलेगी। इस संबंध में भगवद गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, अर्थात सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान कृष्ण हैं और सारी तपस्याओं के भोक्ता भगवान कृष्ण हैं। थोड़ा ये समझ लेना होगा, यज्ञ मतलब वह कार्य जो भगवान के लिए किया जाता है। तो यानी यज्ञ जो है वह कर्मों से उत्पन्न होते हैं। तो जब भगवान बोल रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, अर्थात जो कोई भी व्यक्ति तपस्या करे, जो कोई भी वह कार्य करे, वह भगवान को करना सीख ले या भगवान को समर्पित करते हुए करना सीखे। और क्यों? क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात भगवान जितने भी लोक हैं उसके परम ईश्वर हैं, सब कुछ भगवान का है। प्रायः हम सब लोग सोचते हैं कि जो वस्तुएं हमारे पास हैं, ये हमको दी गई हैं, वो हमारी हैं, और ये सोचते नहीं कभी कि इनमें से हम एक भी वस्तु नहीं लाए, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमने स्वयं सृजित नहीं किया है। तो जो व्यक्ति समझता है कि उसका शरीर वाणी मन सब कुछ भगवान का है और इस कारण से वह अपने वाणी से मन से शरीर से भगवान की सेवा करता है और यह विश्वास रखता है कि भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी भगवान सभी के सुहृद हैं, यानी कि सभी जीवों के भगवान कल्याण चाहते हैं, उनके मित्र हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब समझ लेता है तो शांति को प्राप्त करता है। अब इसमें शांति का सूत्र है क्या? अगर हम ये तीनों बातें समझ लेते हैं तो यह कैसे हो जाएगा कि हम शांत हो जाएंगे, यह प्रश्न आएगा। देखिए, मेन बात ये है कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो वह हमें दुख देती ही है। भगवान इस बात को भगवद गीता में बताते हैं, यही संस्पर्श जाप होगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन त्यह न तेषु रमेते बुधा। जब व्यक्ति इंद्रियों से संस्पर्श भोग उत्पन्न करता है, छूता है, सूंघता है, कुछ भी करता है और उसका संबंध भगवान से नहीं होता है, तो वह जीव के हृदय में दुख उत्पन्न करते हैं, उसे उसके मन में भोग की वासना के निर्माण करते हैं और इस कारण से वह अशांत हो जाता है। फिर से रिपीट करूँगा, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान से अलग कहीं नियोजित करता है, तो फिर वह व्यक्ति इंद्रियों के भोगों के कारण जनित संस्कार से युक्त हो जाता है, उसके मन में छाप पड़ जाती है भोगों की इच्छाओं की, और वो इच्छाएँ ही उस व्यक्ति को अशांत करती हैं, दुखी करती हैं, वस्तुतः जलाती रहती है, उसे काम कहा जाता है, कामाग्नि। तो प्रभुपाद जी इसमें समझाते हैं कि जब इस प्रकार से व्यक्ति अपने कर्मों से भगवान कृष्ण को समर्पित करता है, अपने कर्मों से कृष्ण को संतुष्ट करना चाह का प्रयास करता है, तो क्रमशः धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब उसके हृदय से भोग की इच्छा, मुक्ति की इच्छा या सिद्धि प्राप्ति करने की इच्छा सब निकल जाती है, तो स्वाभाविक रूप से वह शांत हो जाता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति निष्काम होता है और जितनी मात्रा में वह निष्काम होता है वह संतुष्ट होता है, वह सुखी हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवद्गीता के श्लोक में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है कि शांति का सूत्र क्या है, शांत व्यक्ति कैसे हो सकता है। और वो कहते हैं कि इस जगत में शांति का विचार बनाया जा रहा है, प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति जानता नहीं कि शांति का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। ये सिंपल सी बात है, अगर आप हलवा बनाना चाहते हो तो हलवे बनाने की रेसिपी तो पता होनी चाहिए ना। अपने मन गणित तरीके से केवल प्रयास करने मात्र से और रेजोल्यूशन पास करने मात्र से हलवे नहीं बन जाते। उसी प्रकार से अगर किसी को मूलभूत बात कि शांत हम कैसे हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप से नहीं पता, तो सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से भी हम शांत नहीं हो सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 10 लोगों को इकट्ठा कीजिए और 10 के 10 अशांत हैं, क्रोधित हैं, तो वह सब मिल करके शांत हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्यक्तिगत रूप से हम शांत कैसे हो सकते हैं, और फिर हम समझ पाएंगे कि सामाजिक स्तर पे, विश्व के स्तर पे हम कैसे शांत हो सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन से राष्ट्र संघ बना है वह कई वर्षों से प्रयास कर रहा है कि शांति हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध होता ही रहता है। इसका एक मूलभूत बात यह भी है कि जो जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, अपने इंद्रिय भोग चाहता है, इंद्रिय भोग के लिए व्यग्र है, तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी को दुख देगा ही। देखिए जैसे मच्छर बड़ा व्यग्र है हमारा खून पीने के लिए, बड़े व्यग्र होता है, तो वह सोचता नहीं है कि हमारा खून पीने से हमें कितना कष्ट होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आप आसपास देखेंगे जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बड़े व्यग्र हैं, और उस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण वह कभी सोचते ही नहीं हैं कि सामने वाले को कितना कष्ट हो रहा है, जैसे कि मांस इत्यादि खाने वाले लोग। तो यहाँ पे अगर व्यक्ति समझता है कि मेरे स्वामी परम स्वामी भगवान कृष्ण हैं और मैं उनके लिए कार्य करूँगा, और मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मैं भगवान कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, तो ऐसा व्यक्ति शांत हो जाता है। इस संबंध में प्रभुपाद जी एक कैशियर का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि कैशियर एक बैंक में बहुत सारे पैसे गिन सकता है और वह उसमें निर्लिप्त रहता है। बहुत सारे पैसे आते हैं बैंक में, बहुत सारे पैसे जाते हैं, लेकिन अगर वह सोचने लगे कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, ये जितना भी है वो बैंक बैलेंस ये मेरा है और इसको मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करूँगा, तो फिर इस प्रकार से वह परेशानी में पड़ जाएगा। उसी प्रकार से जब व्यक्ति सोचता है कि समझता है कि केवल सोचने की बात नहीं है, समझने की बात है कि सब कुछ भगवान का है, भगवद गीता में बताया गया है, जैसे भगवान बता रहे हैं हमारा नहीं है, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि तो स्पष्ट है कि हमारा नहीं है, और किसका है ये भगवद गीता से मालूम चल जाता है कि ये भगवान का है, तो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और इस बात को भगवान गीता में बोलते हैं त्यागा शांतिर अपैशनम। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को, अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, काम से मुक्त हो जाता है, और वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो हम जब ये समझेंगे कि जो कुछ भी हमारे पास है वह कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा से के लिए उपयोग करेंगे, तब वह माया से, हम तब माया से मुक्त हो सकते हैं। ये बात पहली चीज सीखी हमने। तो वास्तविक कर्म क्या है? कर्म का अर्थ ये है कि व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे, लेकिन अकर्म का अर्थ क्या हुआ? कि हम भगवान के लिए कार्य करें। जैसे कैशियर बैंक में कितना ही नोट को गिन ले लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस नोटों को अपने लिए गिनने चालू कर दे, अपने लिए रखना चालू कर दे, तो उसे दंड प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम चाहे कितना भी कर्म करें, और कर्म तो करना ही है क्योंकि जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन कर्म अगर भगवान के लिए होता है तो फिर वह कर्म व्यक्ति को क्रमशः मुक्त करता जाता है और शांति की ओर अग्रसर करता है। लेकिन अगर कृष्ण को ना समझें, कृष्ण को भोक्ता ना मान करके अपने भोग के लिए कार्य करेंगे, तो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता है। अब हमारा दूसरा विषय है इसी में कि कृष्ण सभी चीज़ों के भोक्ता हैं। यह है इसी श्लोक के आधार पे है, भगवान ने जैसे बोला भोक्ता राम एक तपसा, उसी को समझाने के लिए हमें समझ में आना चाहिए कि हम लोग इस पृथ्वी पर मेहमान हैं। कुछ लोग अमेरिकन हैं, कुछ लोग भारतीय हैं, लेकिन हम सब लोग मेहमान हैं, कुछ समय के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे। तो हम स्वामी तो हैं ही नहीं। अगर हम स्वामी होते तो जो संपत्ति यहाँ एकत्रित करते हैं वह साथ में लेके जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वह संभव नहीं है। तो क्योंकि हम स्वामी नहीं हैं, इसलिए न तो भोग का प्रश्न होता है, न त्याग का प्रश्न होता है। कभी कभी लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में बताओ तो वो सोचते हैं कि घर छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो आप, हम लोग भोग करने के योग्य हैं, ना हम त्याग करने के योग्य हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी मकान मालिक के यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, तो अगर हम घर छोड़ के जाते हैं और कहें कि हम आपके घर का हम अपने घर का त्याग कर रहे हैं, या मैं आपके लिए घर खाली कर रहा हूँ, तो मकान मालिक हंसेगा, वो कहेगा कि अरे तुम्हारा, तुम तो किराएदार थे, तुम तो मेहमान थे, ये घर तुम्हारा था ही नहीं, तो तुमने त्याग क्या किया? और यदि वहाँ पे रहते हुए हम सोचने लग जाएं कि ये मकान मेरा है, तो इस पे भी जो मकान मालिक है वो हंसेगा कि भाई तुम्हारा मकान तो कभी था ही नहीं, तुम तो किराएदार के रूप में रह रहे थे। तो इसलिए यदि हम जगत में वस्तुओं का त्याग करना चाहते हैं या भोग करना चाहते हैं, ये दोनों ही स्थिति गलत है, बल्कि युक्त वैराग्य की स्थिति होती है। अर्थात हम समझें कि सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में उपयोग करें, ना तो हम उस वस्तुओं को भोग करने के लिए इस्तेमाल करें और न ही वस्तुओं को त्यागने के बारे में सोचें। भक्ति की स्थिति युक्त वैराग्य की है, जिसमें भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए नियोजित करता है। इसलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। क्या यह और यही सही ज्ञान है? जब ऐसा करेंगे तब हम हृदय को शुद्ध कर पाएंगे, शुद्ध मानेंगे, अपना शुद्ध हो पाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कोई $100 का नोट कहीं भूल गया है, तो उस $100 के नोट को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई कहे, देखे, अरे वाह, ये $100 का नोट ले लेते हैं और उससे मजाक करेंगे, तो यह गलत होगा। ये हो गया भोगियों की प्रवृत्ति। भगवान भगवान की प्रकृति है, भगवान की संपत्ति का भोग अपने लिए करना चाहते हैं। और दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए कोई आए कहे कि भाई ये $100 का नोट तो है लेकिन जिसका होगा वो कोई ले लेगा, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वह नहीं ले सका तो कोई दूसरा उसे लेकर चला जाएगा। तो यह त्यागियों की स्थिति है, जो कहते हैं जगत मिथ्या है, जगत से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार $100 के नोट का मजा लेकर मजा करना या फिर छोड़ देना, दोनों ही गलत होगा। लेकिन यदि हम उस नोट को उसके सही मालिक को समर्पित करते हैं, तब सही मायने में सेवा होगी। बात समझ रहे होंगे आप। इसी तरह यदि हम यह समझें कि सब कुछ भगवान का है, तब हमारे अंदर यह चेतना जागृत होगी कि हम भोगता नहीं है, हम भोगी नहीं है। और आप देख सकते हैं यह जो सिचुएशन है भोग और त्याग की, स्टेबल भी नहीं है। लोग 6 दिन बहुत मेहनत करते हैं ताकि कुछ धन प्राप्त हो और वह भोग करें, और उस बाद जब वह भोग प्राप्त होते हैं तो उस भोग की अवस्था को भी वह धारण नहीं कर पाते, कुछ समय फिर त्याग देते हैं उसको। क्योंकि देखिए, संडे को छुट्टी लेते हैं, शनिवार को छुट्टी लेते हैं, क्यों? क्योंकि वह जो ग्रहण करने की स्थिति है 5 दिन की, वह भी स्टेबल नहीं है। लेकिन भक्त लोग तो पूरे 2400 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि उसे सुख प्राप्त होता है। तो भोग और त्याग की स्थिति दोनों ही जीव के लिए सही नहीं है। वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझे कि वह कृष्ण का दास है और वह कृष्ण की सेवा करे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर हम अपने हर कर्म को मन से वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो होगा ये कि हमारे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो है वह समाप्त हो जाएंगे, और इस प्रकार से हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। लेकिन अगर यह कहकर हम कहते हैं कि भाई जगत मिथ्या है, छोड़ देना चाहिए और जंगल में चले जाना चाहिए, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपने दूषित मन को अपने साथ में लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सीख लें भक्तों के संग में आकर के कैसे अपने हर क्रिया को, अपने हर प्रयास को भगवान कृष्ण के लिए करना है, जिसे कृष्णार्थम अखिल चेष्टा कहा जाता है, कृष्ण के अर्थ के लिए, कृष्ण के प्रयोजन के लिए हर चेष्टा को करना, तो व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। तो हमने ये सीखा कि कोई हर व्यक्ति यहाँ पे मेहमान है, कुछ समय के लिए आया है, स्वामी भगवान कृष्ण है, और उन स्वामी की, उन भगवान कृष्ण की संपत्ति का उपयोग अगर उनके लिए करते हैं तो व्यक्ति शांति को प्राप्त होगा, और अन्यथा अगर वो भोग करने का प्रयास करे इस जगत का तो वह भी गलत है, और त्याग करने का प्रयास करे वह भी गलत है, क्योंकि वस्तुएँ मूलतः उसकी है ही नहीं, हमारी है ही नहीं, और जितनी भी वस्तुएं हैं वे भगवान कृष्ण की हैं। इसमें समझने वाली बात है कि ये भी है कि जो भौतिक वस्तुएं अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वह हमको इस जगत से बांध देती हैं। जैसे एक स्मार्टफोन है जिसमें मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसे अपने इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो ये निश्चित रूप से मुझे बांधेगा, कर्मबंधन बांधेगा। लेकिन अगर इसी स्मार्टफोन का उपयोग मैं भगवान की सेवा के लिए करता हूँ तो मैं इसका उपयोग करते हुए भी मैं मुक्त हो जाता हूँ, या मुक्त अवस्था में रहता हूँ, शुद्ध होता जाता हूँ, भले ही ये वस्तु तथाकथित रूप से भौतिक है। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप गुलाब का फूल देखते हैं, तो गुलाब का फूल देखते हैं, सोचते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा, तो वह गुलाब का फूल भौतिक होता है और वह हमको बंधन में डालता है। लेकिन वही गुलाब का फूल अगर हम देखते हैं, सोचते हैं कि मैं कृष्ण को समर्पित करूँगा, तो वह तुरंत आध्यात्मिक हो जाता है। तो सब कुछ हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं। अब हम एक और चर्चा करेंगे जो इस श्लोक के आधार पर है कि कृष्ण सबके सुहृद कैसे हैं, कृष्ण हमारे सच्चे मित्र हैं, और अगर हैं तो कैसे हैं। भगवान कृष्ण परम भोक्ता, स्वामी और परम मित्र हैं। और वैदिक शास्त्र के अनुसार जब हम एक शरीर ग्रहण त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं तो भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे साथ साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। कितना प्रेम है भगवान कृष्ण का हमारे साथ, ये दिखाता है कि भगवान हमारे सुहृद हैं। इस जगत में अगर कोई भी संबंध होता है और उसमें हम थोड़ा सा भी संबंध का आदान प्रदान नहीं कर पाते तो वो संबंध टूट जाता है। लेकिन हम अनादिकाल से भगवान को भूले हुए हैं, लेकिन भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमारे हृदय से जाते नहीं। जीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे भगवान उसके हृदय से चले जाएं। और जीव चाहे किसी योनि में हो, चाहे वह सुअर बन जाए, चाहे कुछ या देवता बन जाए या इंसान बन जाए, भगवान उसके हृदय में रहते ही हैं। अब आप प्रश्न करेंगे हृदय में क्यों रहते हैं, तो उसको हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं इस जगत में कि जब व्यक्ति अमीर होता है तो उसके बहुत मित्र होते हैं, लेकिन जैसे ही वह गरीब हो जाता है तो सारे मित्र उसको छोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे मित्र नहीं है। वैदिक शास्त्र में वर्णन है कि एक पेड़ पर दो चिड़िया बैठी हैं और एक चिड़िया उस पेड़ पर लगे फल को खा रही है और दूसरी चिड़िया चुपचाप उसे देख रही है। तो चुपचाप देखने वाली चिड़िया जो है वह भगवान कृष्ण हैं और फल खाने वाली चिड़िया जीव है, हम सब लोग हैं। जो यहाँ पे हम लोग जो भौतिक कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के फलों को भोग रहे हैं और भगवान केवल उपदृष्टा देख रहे हैं और अनुमंता वह उसका उसको स्वीकृति दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की स्वीकृति के बिना जीव भोग भी नहीं कर सकता है। लेकिन चुपचाप इस कार्य को कर रहे हैं, उसमें निर्लिप्त नहीं होते, उसमें वो कुछ कहते नहीं कि तुम इसको मत करो। तो फिर भगवान हृदय में हैं क्यों? तो देखिए, जब इसको उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जीव कभी तो मेरी तरफ मुड़े, और इसी बात को उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि अर्जुन जब युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए तो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें युद्ध करना है कि नहीं करना, और ऐसी अवस्था में वह भगवान कृष्ण की तरफ उन्मुख हुए और बोला, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ और आप मुझे स्वीकार करें, मुझे उपदेश दें। तो ये भगवान के हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहने का कारण है। भगवान कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठ कर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब कहेंगे कि हे कृष्ण, हम आपके सामने पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहते हैं, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे निर्देश दीजिए। इस संबंध में भगवान राम ने, भगवान कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं है, भगवान राम का एक वचन है कि कोई एक बार भी मेरे सामने प्रणाम करता है और मुझसे याचना करता है, अभय याचना करता है कि मैं भगवान आपका हूँ और आप मुझे मेरी रक्षा करिए, तो मेरा वचन है कि अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो इस श्रद्धा से अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए उन्मुख हो जाए, कहने का अर्थ ये है कि भगवान हमारे हृदय में इसलिए हैं ताकि किसी समय अगर जीव के हृदय में इच्छा हो कि वह भगवान कृष्ण के शरणागत हो तो कहीं कोई देरी ना हो जाए। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ उन्मुख होंगे, अभी तो हम तो इस जगत में जगत के संबंध में उलझे रहते हैं और अनादिकाल से भगवान को भूले ही बैठे हैं। लेकिन भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, ये समझना मुश्किल होता है, लेकिन भगवान हमसे, हम सभी जीवों से इतना प्रेम करते हैं कि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ उन्मुख होगा। तो ये दिखाता है कि भगवान कृष्ण हमारे सच्चे मित्र हैं और हमारे सच्चे मित्र के रूप में हमारे स्वामी के रूप में हमारे हृदय में ही हैं, और हमारा कर्तव्य है, हमारा एकमात्र कर्तव्य है ये समझना और उनको संतुष्ट करने वाले कार्य में लगना। इसको भागवत में बताया गया है कि हे ब्राह्मणों, वर्णाश्रम इत्यादि सभी के द्वारा उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि वह हम लोग भगवान श्री हरि को, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करें। अब एक आखिरी चर्चा है कि श्रेष्ठ सामाजिक कार्य क्या है, कैसे हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। लोग सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, लेकिन वह जानते नहीं कि कल्याण है क्या। इस संबंध में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी। प्रायः लोग यह सोचते हैं, मनुष्य सोचता है कि वह इस जगत में कुछ भौतिक लाभ ले सकता है और इस कारण से भोग की प्राप्ति के लिए वह प्रयास करता है और वह इस जगत में बंध जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना उत्पन्न होती है, उसे ज्ञान होता है भगवद्गीता सुनकर कि वह भोक्ता नहीं है और भोक्ता तो भगवान है, तो फिर वह मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में जैसे हमने पढ़ा कि भगवान ही यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता हैं और जगत के स्वामी हैं और वही जीवात्माओं के एकमात्र सखा हैं। तो जितने भी हम कल्याण कार्य करते हैं उसमें हम यह सोचते हैं कि हम मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं, और इस प्रकार से हर व्यक्ति अपने को केंद्र में रखता है। तो कोई अपने को भले ही उत्तम राष्ट्रीय कार्यकर्ता, जनता तथा देश का श्रेष्ठतम मित्र कह ले, किंतु वह किसी का श्रेष्ठतम मित्र नहीं हो सकता है। एकमात्र मित्र तो श्री कृष्ण है। तो श्रेष्ठ सामाजिक कार्य ये है कि हम लोगों को, बद्ध जीवों को, ये चेतना तक उठा दें, स्तर तक उठा दें कि वह समझने लग जाएं कि कृष्ण ही उनके वास्तविक मित्र हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण से मित्रता स्थापित कर लेता है तो वह कभी धोखा नहीं खाएगा, और उसको जो भी कुछ चाहिए, भौतिक, आध्यात्मिक, वह सब भगवान कृष्ण की व्यवस्था से पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि लोगों को समझाया जाए कि वह कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण उनके सर्वोच्च स्वामी हैं और उनके मित्र हैं, और उन कृष्ण की सेवा करना ही उनका परम कर्तव्य है। हम लोगों की कितनी मित्रता कर सकते हैं, पहली बात तो हम कितने लोगों की मित्रता कर सकते हैं और उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। भागवत में बोला गया है काल कर्म गुणाधीनो, काल कर्म दुगुणाधीनो देह यह पंच भौतिका। हमारी जो पांच भौतिक देह है वह काल कर्म और गुणों के प्रभाव में है, तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती, वो दूसरों की क्या रक्षा करेगी। तो इस संबंध में हर व्यक्ति को यही सिखाना, समझाना कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं और उनकी सेवा करके ही हमें परम कल्याण प्राप्त हो जाएगा, यही श्रेष्ठ सामाजिक कार्य है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि यदि कोई व्यक्ति कहे भी कि मैं सबका मित्र हूं, लेकिन वह कब तक मित्र रहोगे? जब तक तुम्हारा शरीर है या फिर जब तक उस सामने वाले का शरीर है। लेकिन भगवान कृष्ण की अगर कोई व्यक्ति शरणागत हो गया तो जन्म जन्मांतर उसको भगवान की लाभ मिलेगा, उसका संरक्षण मिलेगा, और अंततोगत्वा भगवान की सेवा करने के कारण वह भगवान के धाम चला जाएगा। साथ ही साथ हमें समझ में आना चाहिए कि हम कितने लोगों के मित्र बन सकते हैं। जितने जीव जगत में है वो अनंत हैं, तो हम लोग और हमारे पास जितने साधन है वो बहुत सीमित हैं, हम सबकी मदद कर भी नहीं सकते। तो इसलिए हम सब लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते। समान लोगों की श्रेष्ठतम सेवा यही है कि हम उनमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न करें, जिससे वे जान सकें कि कृष्ण ही परम भोक्ता, परम कर्ता तथा परम मित्र हैं, तब उनका ही बीमारी सही होगी। ये ध्यान देना चाहिए कि कृष्ण भूलिया जीव अनादिर महिर्मुख, अतेव माया दे तार संसार दुख। जीव जो है वह अनादि काल से कृष्ण से बहिर्मुख है, इसी कारण अतेव, इसीलिए माया दुख दे रही है उस जीव को, और दुख माया के द्वारा दिया जा रहा है, इसको हम अपनी शक्ति से कम नहीं कर सकते। केवल अगर जीव के दुख को हमें मिटाना है तो एक ही मात्र तरीका है कि जीव भगवान कृष्ण के शरणागत हो। जब वह भगवान कृष्ण के शरणागत होगा तभी वह भगवान कृष्ण माया को आदेश देंगे कि इस जीव को तुम परेशान मत करो, और तभी उसके दुख की समाप्ति होगी, अन्यथा कोई तरीका नहीं। तो निष्कर्ष यह है कि वाकई अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी हों तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और दूसरों को भी समझाना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, कृष्ण के सेवा करके ही हम सुखी हो सकते हैं, और जब कृष्ण की सेवा करेंगे तभी हम शांत हो सकते हैं। इस संबंध में एक उदाहरण और भी है कि जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको माला पहनाने से आप संतुष्ट नहीं कर सकते, सुखी नहीं कर सकते, शांत नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हृदय में अगर भगवान की भक्ति है तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसको भागवत में भी कई बार पुष्ट किया गया है। तो हर व्यक्ति को इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे वह अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करे, और इसके द्वारा ही वह हृदय में शांति का अनुभव कर सकता है। और भगवान गीता में बोलते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख कहाँ प्राप्त होगा। तो पहले व्यक्ति का हृदय शुद्ध होना चाहिए, वो शांति को प्राप्त हो, जितने भोग की वासना है वह मिटें, और फिर अंततोगत वह भगवान की भक्ति के सुख को प्राप्त कर पाएगा। हरे कृष्ण।